वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे तवैवास्मि न जिगामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणं तिहे। श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है कि जीव भगवान का नित्य दास है, किंतु अनादि काल से उनके विमुख होकर भोग वासनाओं में पढ़कर अनादि काल से दुख भोग रहा है। किसी भी योनि में जाकर उसे प्रचुर भोग मिलता है और उन सुखों से वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। भगवान ने कृपा करके करोड़ों करोड़ों योनियों के बाद में ये मनुष्य शरीर दिया। जीव हमारे विमुख होकर अनादिकाल से दुख भोग रहा है, इसलिए कृपा करके उसके दुख से दुखी होकर मनुष्य जन्म देते हैं। मनुष्य जन्म देने के साथ साथ में भगवान की कृपा से ही स्वयं भगवान गुरु के रूप में आते हैं अथवा अपने परिकरों में से किसी को भेज देते हैं और उनके सत्संग से हरि कथा होती है। फिर वो समझते हैं कि मैंने विमुख होकर के भगवान से करोड़ों करोड़ों योनियों में दुख भोग करके कहीं भी आनंद नहीं मिला, इसलिए कहते हैं परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यमपि हधीरः तूर्णम जतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत् निशेषाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। देखो, इस जन्म में केवल भगवत भजन करो, दूसरा कुछ मत करो। जीवन को निर्वाह करने के लिए जो कुछ करना है उसे करो सद उपाय से। निर्वाह करो, नहीं तो भजन भी नहीं होगा, और नहीं तो ये सोचते हो कि इस जन्म में विषय सुख भोग लूं, तो क्या कुकर सुकर गधे सुअर उनको स्त्री पुत्र परिवार नहीं मिलता? सब कुछ मिलता है। किसी भी कुत्ते की योनि में भी जाओ, वहाँ एक नहीं अनेकों कुतियाँ मिल जाएंगी, अनेक कुत्ते मिल जाएंगे, सर्प योनि में भी मिल जाएगा, पशु पक्षी कीट पतंग की योनि में भी मिल जाएगा, ये तो सर्वत्र है। किंतु लब्ध्वा सु दुर्लभम इदं बहु संभवन्ते, बहुत बहुत जन्मों के बाद में ये मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जन्म मिला है। देवता, गंधर्व, अश्वरा, कीड़े मकोड़े, गधे, सुअर, पशु पक्षी जलचर स्थलचर नभचर हुए, आनंद को खोजा कहीं नहीं मिला। देवता भी तरसते हैं मनुष्य जन्म के लिए और हम लोग दुर्भागा मनुष्य जन्म पा करके गुरु पा करके धाम ब्रजधाम में आ करके भजन नहीं करते। स्त्री पुत्र परिवार के प्रति धर्म को ही कर्तव्य को ही समझते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है, भगवान का भजन करने को कर्तव्य नहीं समझते। समय बचेगा तो करेंगे, बस इसी में उलझे रहते हैं और ना जाने कब मृत्यु आ जाती है। इसलिए लब्ध्वा सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभ मनुष्य जन्म, और उससे भी दुर्लभ है सद्गुरु का मिलना, साधु संग मिलना, ये और भी दुर्लभ है। दुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अधीयते। मनुष्यम अर्थद, मनुष्य जन्म का फल ये मनुष्य योनि में ही मिल सकता है और किसी योनि में नहीं, किसी भी जन्म में नहीं। अर्थदम, एक होता है अर्थ और दूसरा होता है अनर्थ। अर्थ माने रुपया पैसा संपत्ति, ये नहीं, भगवत भक्ति रूपी संपद ये अर्थ है। और अनर्थ क्या है? न अर्थ, भगवत भक्ति जिसमें नहीं है वो सब बातें वस्तु में सभी अनर्थ हैं। भगवत भक्ति में जो बाधा है कहा है, पुत्र परिवार ये स्वजनाख्य दस्यु हैं, माने क्या, इनको स्वजन देखते हैं, हमारे बंधु बांधव हैं, किंतु ये डकैत हैं। हमारा जो प्रेम भगवान के प्रति लगना चाहिए था वो प्रेम ये लूट लेते हैं, धनजन पुत्र परिवार, इसलिए डकैत हैं। इन डकैतों से सावधान रहो। इसलिए नारद ऋषि जैसे लोग, सुखदेव गोस्वामी जैसे लोग, चैतन्य महाप्रभु उनके परिकर लोग अंधकूप को छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए चले गए साधु संग में। कब मृत्यु हो जाएगी कब नहीं, सब समय मृत्यु सिर पर मंडरा रही, इसको हम देखते ही नहीं हैं। इसलिए लब्ध्वा सुदुर्लभम इति बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अपि इह, इसी मनुष्य जन्म में ही ये भगवत भक्ति रूपी संपत्ति, उससे भी अधिक प्रेम संपत्ति, भगवान की सेवा रूप प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। किंतु क्यों नहीं होता? अनर्थ के मोह माया जाल में जकड़े हुए हैं। पति के प्रति हमारा ये कर्तव्य है, स्त्री के प्रति, बच्चों के प्रति हमारा ये कर्तव्य है, ये सब। भागवत में एक जगह कहा गया है, ये सब क्या है? तृण से ढके हुए ढका हुआ ये कुआं है जिसमें आग धधक रही है, एक कुआं आग से धधक रहा और वो तृण से आच्छादित है, ऐसा ही ये मोह है, उसमें गिरे और जल करके भस्म हो गया, तत् भक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए वो कहा है और एक जगह, प्रमदासु
संगम न कुर्यात,
संगम न कुर्यात प्रमदासु कदाचन
योगस्य पारं परमारुच, संगम न कुर्यात प्रमदासु जात।
जो भगवान की भक्ति करना चाहते हो, जो आनंदमय पुरुष की सेवा करके आनंदमय हो जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए, सच्चे साधकों के लिए कभी भी कामनी का दर्शन नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, नहीं तो उसमें जल करके खत्म हो जाएंगे। बल्कि शेर के पिंजरे में वहां पर जान दे दो, और आग लगी है उसमें कूद पड़ो, मर जाओगे, फिर वहां से फिर भक्ति हो जाएगी। किंतु ये इसे उबरना बड़ा भारी कठिन है। इसलिए तूर्णम जते इतना पते, शरीर के पतन होने के पहले अर्थात मृत्यु से पहले ही परमार्थ के लिए तीव्र चेष्टा करो, सब छोड़ करके। जैसे रूप सनातन इत्यादि का देखा जाता है, और लोगों का राजमंत्रित्व के ऊपर लात मारकर जेल में जाकर एक पैसा भी साथ में न लेकर, नौकर भी यदि कुछ रखता है तो उसको भी भेजकर भजन करने के लिए वृंदावन में आए। राजा के लड़के या राजा के मंत्री और भीख माधुकरी मांग करके कभी नमक, कभी सूखी रोटी, कभी सूखा चना किसी प्रकार से चबा करके भजन करते हैं, विषयों का अन्न नहीं खाते और गुदड़ी पहनकर किसी प्रकार से भजन करते हैं, और हम लोग ठाट बाट के साथ में रह करके भगवान का भजन करते हैं, इसलिए तीव्र भजन नहीं हो पाता। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को यह जन्म नष्ट मत करो, तीव्र भजन करो, निरपराध होकर के भजन करो। कभी भी ज्ञात अज्ञात रूप से किसी साधु के प्रति कोई भी निंदा न हो जाए, ज्ञात या अज्ञात रूप से। यदि कोई ये कहता है साधु का लक्षण क्या है, भागवत में बतलाया गया, कृपालु, अकृत द्रोह, सत्यसार, समदर्शी, निर्दोष, बदान्याय, मृदु, सुचि, अकिंचन, और कृष्ण, ये तो भगवत भक्तों का लक्षण है। ऐसे भक्तों की ही निंदा करने से अपराध होगा, अन्यथा नहीं। सचमुच में जो दुराचारी है या सुदुराचारी है, बदमाश है, और भक्त ऊपर से ये पहन रखा है, उसकी निंदा करने से क्या होगा? जो सचमुच में निंदा का पात्र है उसकी निंदा करनी चाहिए। अजय खबरदार मत करो, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। यदि कोई अनन्य रूप से भजन करता है, अर्थात दूसरे देवताओं का भजन नहीं करता, और भक्ति के अतिरिक्त ज्ञान कर्म योग इत्यादि का पथ अवलंबन नहीं करता, दूसरे देवताओं का भी भजन नहीं करता, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण की चेष्टा करता है, किंतु दैवात हठात यदि दुराचार सुदुराचार यदि हो जाए तो साधु रेव मंतव्य। अभी उसने छोड़ा नहीं है, ये दुराचार तो है किंतु अभी भी अनन्य रूप से दूसरों देवताओं का भजन नहीं करता, और कृष्ण की प्रीति के लिए ही जो कुछ करता है, हरिनाम भी करता है, किंतु है दुराचारी, सदाचारी ही समझो, नहीं तो तुमको अपराध लगेगा। जल्दी से वो धर्मात्मा है, क्योंकि वो भक्ति है ना, वो भक्ति शीघ्र ही उसको भोगों को भोगा करके या उसको जला करके खत्म कर देगी, और वो साधु ही है। इसलिए ऐसे लोगों की भी निंदा मत करो, दूसरे के स्वभाव की निंदा या प्रशंसा मत करो, अपने अंदर देखो तुम कैसे हो। और तीव्र गति से मैंने क्या, वैष्णव के अनुगत्य में शतांग प्रसंगम वीर्य संविदौ भवंत ऋत कर्ण रसायना कथा तज्जो सनाथ आशु अपवर्ग वर्तमणि श्रद्धार्थी भक्ति अनुक्रमिष्यति। शतांग प्रसंग जो संत हैं जिसके अंदर में भक्ति है, जिन्होंने कृष्ण को संपूर्ण रूप से आश्रय कर रखा है, ऐसे जो साधु हैं शतांग प्रसंगम वीर्य संविदौ, कृष्ण के भक्तों में परस्पर जब मिलते हैं तो कृष्ण की बड़ी बलवती वीर्यवती हरि कथा होती है। स्थानी स्थिता, उस स्थान में ही रहकर जिस स्थान में तुम हो, चाहे गृहस्थ हो, त्यागी हो, चाहे जैसे जिस रूप में हो, जहां अवस्थित हो वहां हो, किंतु हरि कथा जहां हो रही वहां पर अपने तन से मन से वचन से उसे प्रणाम करो और हरि कथा का श्रवण करो। उस स्थल को प्रणाम करो जहां हरि कथा हो रही है, जहां साधु भक्त लोग एकत्रित हैं जो हरि कथा कर रहे हैं उनको प्रणाम करो प्रीति के साथ में, जो कथा श्रवण कर रहे हैं क्योंकि उनके बिना कथा ही नहीं होगी, परीक्षित महाराज नहीं रहेंगे तो सुखदेव जी क्या हरि कथा बोलेंगे, इसलिए श्रोता को भी प्रणाम करो, उस स्थान को प्रणाम करो। और जिसने ये भागवत के लिए या हरि कथा के लिए आयोजन किया है उस व्यक्ति को भी प्रणाम करो, और ऐसे हो करके भगवान का कथाओं भगवान की कथाओं का श्रवण करोगे तो क्रमशः साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति होगी, अवश्य होगी। किंतु सावधान रहो, काल कलीर बलीन इंद्रिय वैरी वर्गा श्री भक्ति मार्ग यह कंटक कोटि रुद्धा। कली काल है, पहले बतलाए ना, भगवान का भजन करने वालों और भक्ति चाहने वालों को स्त्रियों का संग कैसा है, वो तीर्ण से ढके हुए कुएं में आग भयंकर लगी है उसके समान है, उसमें गिरने के समान है। खूब सावधान रहो, इसलिए माया बड़ी कठिन है, सेवा करने के भांति किसी प्रकार से घुस जाती है, घुसती है सुई की तरह और निकलती है हाथी के समान छेद कर। आया समझ में क्या, जैसे किसी चीज में कोई चीज जा नहीं रहा तो सुई लगाओ, फिर मोटी सुई लगाओ, उसके बाद में लोहे का कोई और चीज लगा दो, फिर धीरे धीरे हाथी उसको पार कर जाए। अर्थात थोड़ा सा अपराध बहुत बड़ा अपराध, अंत में भयंकर अपराध हो जाए। इसलिए बचो, मनुष्य जीवन का कर्तव्य ये है सबसे भगवान का भजन करना, अभी बतलाया हमने, इसलिए बचो। और इनसे अलग रहो, पुरुषों के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, यदि ये तो पुरुषों ने शास्त्र लिखे व्यास जी ने और लोगों ने, इसलिए स्त्री को बतलाया ना, कोई स्त्री यदि लिखती तो क्या लिखती, पुरुषों के लिए लिखती, जब पुरुष के प्रति मोह ऐसा है वो कुएं जलता हुआ कुएं के समान, दोनों दोनों के लिए, इसलिए बच करके रहो, माया का रूप है। कोई यदि चाहता है कि हमने बहुत दुष्कर्म कर लिए, लोगों को क्या मुख दिखलाऊंगा, इसे बीस खा करके मर जाना अच्छा है रिल से कट जार कर, ये तो और भयंकर हो गया, उसमें कुछ हरि नाम करके हरि कथा करके सुधरने की जो भावना थी वो न रह करके क्या होगा, भगवान का दिया हुआ भजन का शरीर तुमने अपनी इच्छा से छोड़ दिया, इसके लिए कोटि कोटि असंख्य नरकों में अनंत काल के लिए शरण होगा। इसलिए साधु संघ में रहो, साधु संघ एक चार दीवारी है। जो लोग थोड़ा सा भी कलयुग में संत महात्मा जो कुछ भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं, उनके आश्रय से तो आप पैर इधर बढ़ाया, चारों तरफ में आग जल रही है कलिकाल में, उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। इसलिए उस घेरे में रहो, चार दीवारी में साधु संघ के, नहीं तो कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। जहां चाहवा चार दीवारी से आगे गए, कदम लिया, वहां जल मरो। इसलिए लब्ध्वा सतांग प्रसंग मम विज्ञ संविदौ भवन्ते रत्करण साहेना। जहां अपने को ही मान लिया साधु और अपने से बड़े लोगों को नहीं समझा, महत्पुरुषों को नहीं समझा, वहां पतन अनिवार्य है। इसलिए साधु के मुख से विगलित अपने आप क्या है, तस्मिन महान मुखरितो भगवत, तस्मन महान मुखरितो सरिता सवंती ताजे पिवंत निप गाढ़ करनी। गाढ़ करनी मैंने हो जो अच्छी तरह से सुनता है पहले, और सुन करके फिर दूसरा दूसरे को सुनाता इत्यादि है। वहां पर भगवान की निरंतर हरि कथा साधुओं के हृदय में से दूसरों के पास में निकलती रहती है, जैसे कैलाश मानस सरोवर से असंख्य नदियां निकलती हैं, उनकी धारा नहीं सूखती, चारों तरफ में बहती रहती हैं। उसी तरह से साधुओं के मुख से अपने आप विगलित होती है कथा। उनमें कोई स्नान करे, डुबकी लगाए, तो हरि भक्ति हो सकती है, प्रेम हो जाएगा, मनुष्य जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए इस चार दीवारी से मत निकलो भाई, और अपने मन की बात मत चलाओ, उसके मत मानो। अनकंट्रोल्ड माइंड है, अपने स्वतंत्र मन की बात मत मानो, सुनो शास्त्रों की बात, सुनो भगवान की बात, सुनो गुरु की बात, सुनो वैष्णव की बात, सुनो, तब हमारा कल्याण हो सकता है। आज यही रोज ही 5 मिनट नहा अंत में बैठेंगे, हरि कथा हो, कीर्तन रोज हो, और 10 मिनट अंत में आकर के मैं बैठूंगा। महामंत्र बोलो तो कौन करेगा? अरे यहाँ पर कोई प्रहलाद नाम का एक लड़का था ना, प्रहलाद ना कौन जो कीर्तन करता था।